ये आकाशवाणी है। अब आप वैष्णवी से समाचार सुनिए। भारत और चीन के बीच पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर गश्त को लेकर सहमति बन गई है। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने इस समझौते की सराहना की है। उन्होंने कहा कि दोनों देश 2020 में नियंत्रण रेखा पर जहां थे वहीं वापस आ गए हैं। विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री ने बताया कि दोनों पक्षों के बीच विस्तृत चर्चा के बाद यह सहमति बनी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए आज रूस रवाना होंगे। श्री मोदी रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के निमंत्रण पर जा रहे हैं। सम्मेलन का विषय न्यायसंगत वैश्विक विकास और सुरक्षा के बहुपक्षवाद को सशक्त करना है। रूस में भारत के राजदूत विनय कुमार ने कजान में आकाशवाणी संवाददाता से कहा कि ये शिखर सम्मेलन नेताओं को प्रमुख वैश्विक मुद्दों पर चर्चा करने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच प्रदान करेगा। ये ब्रिक्स द्वारा शुरू की गई पहलों की प्रगति का भी आकलन करेगा। श्री कुमार ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ द्विपक्षीय बैठक भी करेंगे। प्रधानमंत्री की रूस यात्रा के बारे में नई दिल्ली में पत्रकारों को जानकारी देते हुए विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री ने कहा है कि भारत ब्रिक्स का संस्थापक सदस्य है और इसकी स्थापना के बाद से सभी गतिविधियों में शामिल हुआ है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू नई दिल्ली में आज 5वीं राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2023 प्रदान करेंगी। केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय ने सर्वश्रेष्ठ राज्य, जिला, ग्राम पंचायत, शहरी स्थानीय निकाय, जल उपयोगकर्ता संघ और सर्वश्रेष्ठ नागरिक समाज सहित 9 श्रेणियों में 38 विजेताओं की घोषणा की है। सर्वश्रेष्ठ राज्य की श्रेणी में प्रथम पुरस्कार उड़ीसा को मिला है, उत्तर प्रदेश को द्वितीय और गुजरात तथा पुदुचेरी को संयुक्त रूप से तृतीय स्थान मिला है। सरकार उड़ान योजना को अगले 10 वर्षों तक जारी रखने की योजना बना रही है। उड़ान योजना के 8 वर्ष पूरे होने के अवसर पर नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू ने कहा है कि 50 और हवाई अड्डे शुरू करने के साथ ही वर्तमान हवाई अड्डों की क्षमता बढ़ाने का भी योजना है। श्री नायडू ने कहा है कि सरकार विमान परिचालन को प्रभावित करने वाली फर्जी कॉल की समस्या से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए सुरक्षा और सतर्कता तंत्र को बढ़ाने के लिए कदम उठा रही है। उन्होंने कहा कि सरकार फर्जी कॉल को संज्ञेय अपराध बनाने पर विचार कर रही है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कल नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक में पूर्वोत्तर राज्यों की राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की समीक्षा की। इस बैठक में पूर्वोत्तर राज्यों के मुख्यमंत्री और सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। श्री गडकरी ने कहा कि बैठक की चर्चा महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे को समय को पर पूरा करने, गतिशीलता बढ़ाने और उत्तर पूर्व क्षेत्र में आर्थिक विकास को बढ़ावा देने पर केंद्रित थी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मुलाकात के बाद जूनियर डॉक्टरों ने अपनी भूख हड़ताल वापस ले ली है। मुख्यमंत्री ने कल राज्य सचिवालय नबन्ना में प्रदर्शनकारी जूनियर डॉक्टरों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। बैठक में आरजी कर मेडिकल कॉलेज घटना की पीड़िता को न्याय दिलाने समेत विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई। कांग्रेस ने कल झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए 21 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। झारखंड सरकार में मंत्री रामेश्वर उरांव लोहरदगा विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे और पार्टी के वरिष्ठ नेता डॉ अजय कुमार जमशेदपुर पूर्वी सीट से चुनाव लड़ेंगे। राज्य के मंत्री डॉ इरफान अंसारी को उनकी मौजूदा जामताड़ा विधानसभा सीट से मैदान में उतारा गया है। दिल्ली और एनसीआर क्षेत्र में वायु की खराब गुणवत्ता को देखते हुए ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान का दूसरा चरण ग्रेप 2 आज सुबह 8 बजे से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में लागू किया जाएगा। ये निर्णय नई दिल्ली में एनसीआर और आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग की उप समिति की बैठक के दौरान लिया गया। समिति ने लोगों से अक्टूबर से जनवरी के दौरान निर्माण और विध्वंस गतिविधियों से बचने का आग्रह किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।